आज का जो विषय है कि वैल्यूज, यही एक समाधान है वर्तमान समस्याओं के लिए। वैसे वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो समय बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। कई बार ऐसा एहसास होता है कि एक साल बीत गया, इतना जल्दी समय पास हो गया, कैसे पास हो गया। ऐसे लग रहा था कि अभी तो जनवरी था और अभी 5 मास बीत गए, तो कितना फास्ट समय चलने लगा है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो समय की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है, और नाजुक होने के कारण समस्याएं, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे देखा जाता है कि ये जो परिस्थितियां समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इसका समाधान कैसे करें और कहां से शुरू करें, क्योंकि हर परिस्थिति जो भी सामने आती है जीवन में वो कोई ना कोई रिस्पांस डिमांड करती है, और वो रिस्पांस हमेशा मनुष्य के भीतर से निकलता है। और कई बार हम इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, कई बार ऐसी हमारी मानसिक स्थिति बन जाती है कि हम उन परिस्थितियों का जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसके लिए नेगेटिविटीज को अपना लेते हैं और उसको ही अपना सहारा बना देते हैं और वो परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड करना आरंभ करते हैं। जिस प्रकार मान लो कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो परिस्थिति जब रिस्पॉन्स मांगती है तो वो रिस्पॉन्स हम गुस्से के बल पर या अभिमान के वश करने लगते हैं। अब ये गुस्सा या अभिमान या जो भी है वो कमजोरियां मानी गई है, इसलिए व्यक्ति कई बार कहते हैं मेरे में और कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, बस उस समय मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। तो गुस्सा एक कमजोरी है, और कमजोरी में, कमजोरी का आधार लेकर के वो परिस्थिति को पार करना चाहे, समस्याओं को सुलझाना चाहे, क्या वो कर पाएगा? वो परिस्थिति को पार करके सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, कमजोरी के बल पर, कमजोरी को सहारा लेकर के कहां तक सक्सेसफुल हो सकेगा? प्रैक्टिकल है। अगर हम अपने मन को ही पूछे कहां तक ये संभव हो सकेगा, हां क्षणिक हमें शायद सफलता दिखाई भी देती हो, लेकिन लॉन्ग रन में कभी भी नेगेटिविटीज का सहारा लेकर के कोई सफल नहीं हुआ है। तो इसलिए डेस्टिनेशन है हमारा सफलता, और उस सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए अगर कमजोरी का सहारा लिया तो कभी भी हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब ये कमजोरी आई क्यों और कहां से आई, कैसे अंदर में आई? तो कमजोरियों का जो मूल है, स्रोत है, वो है विकृतियां, और वो विकृतियों के आधार पर ही वो कमजोरियां अंदर में पैदा हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर नेगेटिव टेंडेंसी को डेवलप कर लिया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो समय के साथ अगर चलना है, कदम में कदम मिलाते हुए, तो ऐसे नाजुक समय में अगर आंतरिक स्थिति इन विकृतियों के माध्यम से, कमजोरियों के माध्यम से नाजुक हो गई तो चल नहीं पाएंगे, समय से पहले खत्म हो जाएंगे। तो वर्तमान समय में के साथ चलने के लिए
आंतरिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना होगा। और ये शक्ति कहां से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त हो सकती है? शक्ति प्राप्त होगी जिसका स्रोत है मूल्य। मूल्य के बिना शक्ति आ नहीं सकती है। जैसे शांति मूल्य है, और शांति को जब अपना लेते हैं तो इसी मूल्य के भीतर शक्ति समाई हुई है, कि जिस शक्ति के माध्यम से अगर ये फास्ट परिवर्तित समय में चलना चाहेंगे तब सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये वैल्यूज को जागृत कैसे करें हम अपने अंदर? जागृत करने का तरीका क्या है? ऐसे नहीं कि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है। हर आत्मा अपने असली स्वरूप में मूल्यवान है, पावरफुल है, एक एनर्जी है। एनर्जी कभी शक्तिहीन नहीं होती है, एनर्जी माना ही पावर। तो हर आत्मा जब एक एनर्जी है, एक शक्ति है, तो उसमें ये मूल्य समाये हुए हैं। लेकिन ये मूल्य को जागृत करने का आधार है अपनी विचार शक्ति, चिंतन की धारा, थॉट प्रोसेस। हमारे थॉट प्रोसेस किस दिशा में चल रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जैसा चिंतन वैसा जीवन। एज यू थिंक सो यू बिकम। ये भी कहा है कि यू आर वॉट यू थिंक। यानी मनुष्य के जैसे विचार है, जिस क्वालिटी के उसके विचार है, वो क्वालिटी के विचार ही उसके जीवन की क्वालिटी को बनाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने विचारों की क्वालिटी को देखना होगा कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है। क्या मेरे विचारों की क्वालिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मेरे विचारों की क्वालिटी नेगेटिव है तो जरूर वो विकृतियां ही डेवलप करेगा। अगर मेरे विचारों की क्वालिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव विचार धारा जो है वैल्यूज को जागृत करेगा। यानी वो वैल्यूज हम प्रैक्टिकल कर्म में ले आ सकते हैं, क्योंकि जब तक इसको कर्म में नहीं ले आए तब तक वो भले चिंतन तो चलाया लेकिन वो चिंतन प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं ले पाया। तभी तो कहा गया है कि द फर्स्ट वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। पहला युद्ध मनुष्य के मन के अंदर शुरू होता है, अर्थात मन के अंदर जो विकृतियां हैं, जो ये रूट्स में विकृतियां हैं, उसको पहले हमें समाप्त करना होगा। और इसको समाप्त करेंगे कैसे? तो ये विचारधारा चलती कैसे है? थॉट्स जो है हमारे अंदर वो स्टिम्युलेट कैसे होते हैं? तो जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हमारी विचारधारा को चलाने लगती है। कि आज की जो मीडिया है और वो मीडिया हमारी चिंतन धारा को कौन सी दिशा में ले जाती है, कौन सी दिशा देती है, और वो चिंतन की धारा जैसे जैसे चलने लगती है तो जरूर वो विकृतियां ही ले आती है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हम दुनिया के अंदर ऑब्जर्व करते हैं वो प्रॉब्लम्स के रूट्स मनुष्य के मन के अंदर है और वो मन से ही शुरू हुए हैं। इसलिए जब तक ये मन को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। गीता में बहुत सुंदर कहा है कि हे अर्जुन, मन अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मन अपना मित्र कैसे है और अपना शत्रु कैसे है? तो मनुष्य का मन जब नेगेटिव विचार करने लगता है तो विकृतियों को पैदा करने कारण वो अपना ही शत्रु बन जाता है। और जब वही मन के अंदर पॉजिटिव चिंतन को ले आते हैं तो वो पॉजिटिव चिंतन के माध्यम से वही मन बहुत सुंदर मन बन जाता है और वो अपना मित्र बन जाता है। और यही कला हमें राजयोग में सिखाई गई है कि किस प्रकार हम अपने मन को मित्र बनाएं, क्योंकि मन को मित्र बनाना जिसने सीख लिया उसकी कई कंप्लेन समाप्त हो जाती है। कि आज जो कंप्लेन रहती है विशेष रूप से कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है, बहुत तूफान मचाता है, एक तूफानी घोड़े के समान है, लेकिन हम यही कहते हैं कि ये तूफानी घोड़े को अगर कंट्रोल करने की लगाम हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छी तरह से इस घोड़े के ऊपर राइड कर सकेंगे, और न सिर्फ राइड कर सकेंगे लेकिन इसका आनंद ले सकते हैं। जैसे हॉर्स राइडिंग में जिसको राइडिंग आती हो वो उसको एंजॉय करता है, लेकिन अगर जिसको हॉर्स राइडिंग ही ना आए तो वो हॉर्स उसको गिरा देता है। तो इसी प्रकार मन एक घोड़ा जरूर है, लेकिन इस घोड़े की लगाम को जिसने हाथ में पकड़ लिया हो, मन को जिसने मित्र बना लिया हो, वो मन उसको बहुत सुखद अनुभूतियां भी कराने लग सकता है। और यही सुखद अनुभूतियां जब हम करने लगते हैं तो लाइफ बहुत सुंदर महसूस होने लगती है। ये राजयोग हमें प्रैक्टिकल एक दिशा दिखाता है कि किस प्रकार हम अपने मन को जीत ले, क्योंकि यही आगे कहा गया है गीता के अंदर, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता है। तो इसलिए मन को जीतना यानी ये वैल्यूज को प्रैक्टिकल स्वरूप देना, उस मन में स्थान देना, और जब उस मन के अंदर उसको स्थान मिल गया तो वह जीवन की हर बाजी को जीतने लगता है। नहीं तो यही मन आत्मा शरीर की इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। छोटी सी इंद्रिया है जिह्वा, 2.5 इंच की जिह्वा है, ये जिह्वा कोई लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन आज ये छोटी सी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या हमारा कंट्रोल है अपनी जिह्वा पर? बहुत सुंदर कहावत कही गई है कि दिस टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक बोन्स। और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उस जीवन की हालत क्या हो सकती है? ये जिह्वा के अंदर इतनी छोटी जिह्वा है लेकिन इसके अंदर इतनी शक्ति है, जो चाहे तो किसकी महिमा करके उसको राजगद्दी दिला दे और चाहे तो किसकी ग्लानी करके उसको फांसी के फंदे पर लटका सकती है। और जब यही हमारे कंट्रोल में न हो तो उस जीवन का हाल क्या हो सकता है? जीवन समस्याओं से ही भरपूर हो जाता है, और इसलिए जो भी बाह्य प्रॉब्लम्स भी दुनिया के अंदर देखते हैं वो बाह्य प्रॉब्लम्स के भी जो रूट्स है, जड़ है, वो भीतर है। अपने अंदर जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, नेगेटिव मनोवृत्तियां है, यही नेगेटिव मनोवृत्तियां अनेक प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दे देती है। और इसलिए कई बार कई लोग हमें पूछते हैं कि आप जैसे और समाज सेवी संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार के लोगों की, गरीबों की सेवा करते हैं, आप क्या सेवा करते हो? हम यही कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर पत्ते पत्ते को पानी देता है और पत्ते पत्ते को पानी देने के बाद यही कहता, मैंने इतनी मेहनत की, पत्ते पत्ते को पानी दिया, लेकिन ये वृक्ष सूखता ही गया। कारण क्या हुआ? मूल को पानी नहीं मिला। इसी प्रकार बाह्य रूप से भले हम कितनी भी सेवाएं करते हैं, लेकिन कहा जाता है ज्यो ज्यो दवाई की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। जितनी हम गरीबी मिटाने के लिए भले कितने भी दान कर ले, लेकिन फिर भी गरीबी तो मिटी ही नहीं। कारण क्या? गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस गरीबी का रूट्स है संस्कारों में गरीबी। जब तक मनुष्य के संस्कारों की गरीबी को नहीं मिटाया है तब तक स्थूल गरीबी को हम नहीं मिटा सकते हैं। और संस्कारों की गरीबी के कारण ही आज अनेक प्रकार की बुरी मनोवृत्तियां जो जागृत हो गई है, बुरी आदत जो मनुष्य जीवन में आ गई है, उसके कारण कितने भी उसकी गरीबी मिटाने लिए हम धन दान कर दे उसको, लेकिन वो धन दान करने के बावजूद भी उसकी गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि गरीबी संस्कारों की है। और वो संस्कारों की गरीबी कि जिस गरीबी के कारण अगर हमने उसकी एक आदत को नहीं छुड़ा सके हम, कि उसके जीवन में अगर एक सिगरेट पीने की, एक शराब पीने की आदत है, उसको हम नहीं छुड़ा सके, ये संस्कार की गरीबी अगर हम नहीं मिटा सके, तो क्या उसकी स्थूल गरीबी को हम मिटा सकेंगे? तो इसलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो सेवा करती है रूट्स को पाने देने की, कि जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आत्मा में से संस्कारों की गरीबी मिटने लगती है, तब अनेक प्रकार की बाह्य जो समस्याएं हैं उसका भी हम हल ले आ सकते हैं। और वो संस्कारों की गरीबी उसे सिर्फ छुड़ाते नहीं है हम, लेकिन क्योंकि सिर्फ अगर छुड़ा दिया तो कुछ समय के बाद जो खालीपन रहता है तो वो वापस आदत वो स्थान को ग्रहण कर लेता है। एक बार किसी ने मुझे सुनाया, बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा कि एक व्यक्ति को हमने, वो सिगरेट पी रहा था, तो उसको हमने कहा भाई तुम अपने सिगरेट को छोड़ो। उसने कहा मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा। और धीरे धीरे छोड़ने के लिए उसने क्या किया कि वो पाइप लेना शुरू किया। तो जब भी वो सिगरेट जैसे उसको लगता था, जैसे उसको आदत पड़ी हुई थी वैसे, तो उसने पाइप उस समय ले लेता था। और फिर उसने क्या किया कि सिगरेट जैसा तो टेस्ट नहीं आता था उसको, इसलिए वो दिन में दो बार सिगरेट ले लेता था और बाकी समय पाइप लेता था। तो दो आदत हो गई, सिगरेट भी हो गई और पाइप भी हो गया। फिर तीसरा उसने कहा ये तो और मुश्किल है, अब इसको कैसे मिटाएं? तो उसके बदले हम वो नशे वाला जो खाने का आता है हाँ, वो खाना शुरू करें, ताकि बीच बीच में जब भी ऐसा मन हो तो वो डाल देवे हम बीच में। तो वो डालना शुरू किया तो धीरे धीरे वो भी हो गया, पाइप भी हो गया और सिगरेट भी हो गई, तीन चीजें हो गई। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि अभी क्या करूं, तो और कोई चीज उसने अपनाना शुरू किया। कहने का भावार्थ ये है कि आखिर उस व्यक्ति के अंदर पहले तो एक ही सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन वो सिगरेट पीने की आदत को धीरे धीरे जो कोशिश किया ना, उसमें ये अनेक आदत और अंदर आ गई, घर कर गई। उसका कारण क्या है कि जो एक छोड़ने का संकल्प तो किया छोड़े, लेकिन जो खाली जगह हुई तो वो खाली जगह को भरा नहीं, तो दूसरी आदत ने उसका स्थान ले लिया। तो इसलिए वो खाली जगह जो पड़ती है अंदर में, उसकी जगह पर जब हम वैल्यूज को अपना लेते हैं, तो वैल्यूज को अपना लेने से ही वो खाली जगह भर जाती, ताकि वो बुरी आदत दोबारा प्रवेश कर नहीं सकती है। इसलिए कई प्रवचनों में आपने सुना कि ब्रह्मा कुमारी ने अनेक मनुष्य के जीवन को परिवर्तन किया है, और ये हमारे पास केस स्टडीज है, प्रमाण है, लेकिन ये प्रमाण के साथ यही कहेंगे कि उसका कारण है कि उसको हमने भर दिया कुछ स्ट्रेंथ से। जो स्ट्रेंथ जब उसको मिल गई, जो ताकत जब उसको मिल गई, शक्ति जब उसको मिल गई, तो उस शक्ति के माध्यम से वो दोबारा कमजोर नहीं हुआ। और इसलिए सदाकाल के लिए उसके जीवन में यही वैल्यूज ने ऐसा स्थान ले लिया कि जिसके माध्यम से सदाकाल वो उसी के आधार पर चलता रहा, और कई उसके जो जीवन के अंदर समस्याएं थी, परिस्थितियां थी, उसको सुलझाने के लिए भी वो सक्षम हो गया। इसी के साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। कहने का भावार्थ कि कोई भी करंट प्रॉब्लम्स है, चाहे दुनिया के अंदर, चाहे व्यक्तिगत लाइफ में, चाहे समाज के अंदर, उसके रूट्स है मनुष्य के भीतर अपनी नेगेटिविटीज में। इसलिए ये नेगेटिविटीज को जब हम वैल्यूज से भर लेते हैं, तब कोई भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ओम शांति।